स्पेन का डिक्लाइन कैसे हुआ आपको पता? मुसलमान हुक्मरानों ने बेच दिया था स्पेन को और फिरकों में बट गए थे। आज मैं सुनती हूँ, जिस मुल्क में जाती हूँ मेरे रोना आता है। यानी जब हम फर्स्ट टाइम गए थे, मैं नॉर्वे शायद ओस्लो में, तो वहाँ एक बिल्डिंग इन्होंने दिखाई, इतनी प्यारी बिल्डिंग है कि उसको देख के समझ नहीं आता अंदर कैसे जाना है। ओपरा कहते हैं उसको ना, ओपरा हाउस, शहर का दिल, समंदर का किनारा, यानी जिसको कहे कि वहाँ बंदा सोच भी नहीं सकता। तो साथियों ने बताया कि आज से कुछ साल पहले गवर्नमेंट ऑफ नॉर्वे ने ये जगह मुस्लिम्स को ऑफ़र की थी कि जब भी कभी नक्शा बना होगा तो ये एक रिलीजियस स्पॉट है, तो अगर आप यहाँ अपनी मस्जिद बनाना चाहें तो आपको गवर्नमेंट देगी, सपोर्ट करेगी। और आपको तो फिर क्या हुआ, क्या हुआ होगा भला? मस्जिदों में आपस में फूट पड़ गई कि तुम्हारे मसलक की बननी, हमारी बननी, ये करनी, हम नहीं, हमारी नहीं। उन्होंने कहा जाओ सारे भाग जाओ, किसी को भी नहीं दी वहाँ। उन्होंने वो कसिनो टाइप एक जगह बनाई। ये बच्चों कल क़यामत के दिन जब पता लगना है, मार पड़नी है हमें बड़ी। ये दुनिया में पड़ रही है, ये दुनिया की मार, इनफरादी तौर पे औलादों की बेसकूनियाँ और माल के पंगे, और इतने बड़े बड़े स्लम्स आते हैं, हम कहते हैं $1,00,000 का पट्टा पड़ गया। ये कहाँ से पड़ा? ये आखरत की बजाय अल्लाह ने दुनिया में डाल दिया। वहाँ तो बड़ा ही कुछ होने वाला है हमारे साथ, ये दुनिया में। और मैं कहती हूँ मैं यहाँ बैठ के कुरान पढ़ा रही हूँ तो बस ठीक हो गया। अगर मेरी बात से आपको फ़ायदा नहीं हो रहा, अगर आपके अंदर एक मुर्दा रूह नहीं पैदा हो रही, तो मैं एक नाकाम टीचर हूँ। मैं आपके जिस्म को, आपके खून को, आपके लहू को अगर गर्म नहीं कर पा रही इस दौर में, यकीन करें अगर आप मुझे कहें ना इस आयत की, मैं आपको 25 से 30 अरबिक तफसीरें अभी बोल सकती हूँ। मैं आपको इसकी ज़रा एजुकेशनल तफसीर कराऊँ तो आप तो सो जाएंगे सारे, या फिर लिखने वाले लिखते ही रह जाएंगे, फिर टाइम ही नहीं होगा इन बातों का। अभी तो लफ्ज़ वज़ाहत भी नहीं शुरू की, बहुत आसान है। लेकिन क्या फ़ायदा मुझे किताबी बातें आपको दे जाने का? मुझे पता है कि इल्म एक दौलत है, इल्म की महफिल को फरिश्तों ने ढांका है, मुझे पता है ये सब कुछ, बताया मैं आपको भी, बट मैं नहीं समझती कि मैं हक अदा करूँगी। सोए हुए मुसलमान, हम दीन सीख कर क्या कारनामा कर गए? और अगर आज आप एक अपना कतरा खून का, पानी का, पसीने का, अपने माल का बहाते हैं, ये अल्लाह के ज़िम्मे कर्ज है। अगली आयत में अल्लाह आपको बताता है, मैं तुम्हें इसको इतना बढ़ा के दूंगा तुमसे संभलना ही नहीं है। कभी अल्लाह के साथ कोई आपने छोटा सा मामला करके देखा हो, आपको मेरी बातें फिर समझ आएंगी। हमारे तो अभी अपने मसले ही नहीं ख़त्म हो रहे, ये अल्लाह डालता है मसलों में। प्रॉब्लम है तुम्हारे, हमने इस्लाम की इमारत क्या बनानी है? हम तो अपनी ज़ाती इमारतें भी नहीं पूरी कर पा रहे। हर 4-5 साल बाद तो हमें रेनोवेशन चाहिए, हमारे घरों को चाहिए। फैशन बदलता, हमारे कपड़े बदल जाते, अभी एक फैशन के कपड़े नहीं बन के तैयार तो बगले आ गए। अब छोटे को बड़ा, बड़े को छोटा करें। अभी एक बच्चे की शादी से बमुश्किल फारग हुए 2-2.5 साल की तैयारियों से, अब अगली बच्ची जवान हो गई है, जब इसके हाथ पीले करने, एक नया जिहाद, लड़की का रिश्ता लेने देने से लेके अल्लाह की पनाह, उसको 2 साल में खूब इधर उधर के कर करा के मामले उसके घर भेजने तक है कि नहीं? मैं अपने इर्द गिर्द जानती हूँ, 2 साल पहले निकाह हुआ था शायद, आज तक लड़की नहीं गई घर, और जो लिले तलीले थे वो हो गए। पेंडेमिक आए, शुक्र करें, कहा नहीं करना, जब सारे हालात ठीक होंगे धूमधाम से शादी करके भेजेंगे। तो कोई फौत हो जाएगा ख़ानदान में तो फिर 3-4 माह का चिल्ला कटेगा। ये घर घर खेल रहे हो, तुम्हें क्या हो गया मुसलमानों? तुम कहाँ से आए थे? तुम्हारा असल क्या था? तुम किसके शागिर्द हो? वो मोहम्मद मुस्तफ़ा मुश्तबा, रात दिन उन्होंने एक किया हुआ था, तुम्हें नहीं शर्म आती? मैं कहती हूँ कल नबी को मुंह कैसे दिखाएंगे? हम तसव्वुर नहीं कर सकते उस बात का जो इस एक आयत के पीछे छुपी हुई है। पूरी दुनिया के मुसलमानों को अगर इस एक आयत के, कह लीजिए कि साए में से गुजारना पड़ा, तो सब कट के मर जाएंगे, इल्ला माशाल्लाह जिनसे अल्लाह ये काम लेगा। बातें करते हैं, हमें सिर्फ बातें करनी आती हैं, नारे अब तो वो भी नहीं लगाते हम। लफ्ज़ जिहाद तो सुनकर ऐसे लगता है कि पता नहीं क्या होगा। तो लिखिए, नबूवत ख़त्म हो चुकी, कारे नबूवत बाकी है। रिसालत ख़त्म हो चुकी, कारे रिसालत बाकी है। इसको हमारे असलाफ कहते थे कि वक्ते फुर्सत कहाँ है, काम अभी बाकी है। अभी दुनिया में दूरे तौहीद का इतमाम बाकी है, बिलियंस लोग अभी इस्लाम से दूर हैं और हम फिक्र में नहीं उनकी। तो याद रखिए, कारे रिसालत की तकमील के लिए अहले ईमान की जिम्मेदारियां बताई जा रही हैं इन आयतों में, इससे आगे जो आ रही हैं। खपना पड़ेगा, खपाना पड़ेगा। और अल्लाह ने तो कह दिया था ना कि अल्यौम अकमलतु लकुम दीनकुम वअतममतु अलैकुम नेमती वरदीतु लकुम अल इस्लाम दीना, तो अल्लाह ने जो बात कह दी हुई है ना, वो बिल्कुल सही बात है। इसलिए आपको मुझे दीन इस्लाम की तकमील की ज़रूरत नहीं है, वो अल्लाह कर चुका है, इसको गालिब करना है। ऐसे ही खाना पक चुका है, अब खिलाना है लोगों को। मैंने अपनी शरीयत नहीं बनानी, आपको मुझे इस्लाम की कोई बुनियादी बातें बनाने की कोई ज़रूरत नहीं। सिर्फ लोग कहते हैं ना, बेटा खाना मैंने पका दिया, तुम ज़रा खिला लो। बहुओं को कहती है ना बड़ी औरतें, बेटा मैंने बना दिया, अब आप खिला लीजिए। अच्छा ये कटा पटा है, अच्छा आप बस इसको दम पे लगा दें। सारा काम वो लीडर करके गए थे, कैसे आखिरी दिन तक जिंदगी के तड़प थी एक ही बात की, हल बल्लगता, हल बल्लगता, हल बल्लगता। क्या मैंने पैगाम पहुँचा दिया, क्या मैंने पैगाम पहुँचा दिया। और अभी भी कोई शक था कि पैगाम नहीं पहुँचाया, कोशिशों में तो कोई कमी ना की। कैसे आप ज़रा इमेजिन तो कीजिए ना कि मक्का से मदीना आए पैदल, चले हम खाते पीते जाएं, में मज़े आ रहे होते, अब तो ट्रेन भी बन गई। छुपते, फिर खौफ, फिर दुश्मन के पकड़ने का पीछे मामला, आगे पता नहीं क्या होना है, पीछे पता नहीं क्या। मैंने आपने क्या किया इस रास्ते में, कैसे इस्लाम के पौधे पे बहार है, अभी खाद नहीं बने मुसलमान। आज के दौर में अल्लाह की कसम, बच जाएगा वो मुसलमान घराना जो खाद बन जाएगा इस इस्लाम के पौधे के अंदर बहार लाने की। तो खाद ऐसे नहीं बनती, वो पहले रुलती है, खपती है। आपको तज कर देना चाहिए अपना आराम, आपको कूतेला या मूत पे आ जाना चाहिए। आप मुसलमान जब इस तरीके से होंगे तो फिर देखेंगे कि क्या होगा, फिर देखिए कि इस्लाम देगा। हमारी तो अदाई नहीं ख़त्म होती, हमारे तो लाड ही नहीं ख़त्म होते, हमारे तो नखरे ही कम नहीं होते। हम तो उस लाडले बच्चे की तरह इस वक्त भी बड़े हुए हैं इस दुनिया में, कि जैसे कह लीजिए कि सारे चाव इस दुनिया में पूरे करके जाने हैं, भी कुछ आगे के लिए भी तो छोड़ दो। और देखिए अल्लाह की दी हुई नेमतें, तुम नईम शोर है, लोग कहते हैं पेंडेमिक में हालात ख़राब हो गए, लोग जॉबलेस हो गए, और ये हुआ वो हुआ, आप भी सुनते होंगे ऐसी बातें। तो क्या हो गया, आप इतने लेविश लाइफस्टाइल के क्यों यूज़ टू करके अपने बच्चों को छोड़ रहे हैं। आपको कोरोना के ज़रिए अल्लाह ने असल में यही सबक पढ़ाना था। आप अल्लाह से नहीं मांग रहे, अब हुकूमतों से मांग रहे हैं कि हमारे कुछ मदद कर दीजिए, ताकि हमारी रोटी ज़रा उसी तरह चलती रहे, हम रोज़ बाहर से खाने खाएं, हम अपने बच्चों के लाड देखें, हम उनको 100-100 डॉलर दें, जाओ बेटा हैंग अराउंड करो। ये बच्चे कल आपके साथ एक धूप गर्मी सह सकते हैं, इनको तो माइग्रेन हो जाएगा, ये तो परेशान होंगे, और हम कैसे मज़े से बैठे हैं। देखिए जिस चीज़ की जिस वक्त ज़रूरत होती है ना, वो करें तो फ़ायदा होता है। प्यास लगी हो, आपका गला खुश्क है, और आगे से कोई रोस्ट मुर्गी लेकर आए, खाएंगे, खुशी होगी। और अगर आपको भूख लगी हुई है शिद्दत की, और कोई आपके सामने लाकर पानी के 6 गिलास रख दे, आप कहेंगे खाली पानी पीऊँगी, पेट में दर्द हो जाएगा। जिस वक्त की जो नीड है वो पहचानेंगे, फिर बात बनेगी। दिस इज़ द नीड ऑफ आवर कि वी मुस्लिम्स, और मैं फिर कहती हूँ हम ओवरसीज़ मुस्लिम, बड़ी इज्जत है हमारी, बहुत आसूदगी है हमारे पास। बिजली नहीं गई, मैं कितनी देर से बोल रही हूँ, आपके पास किस चीज़ की कमी, सच बताएं, कोई गरीब है इधर? कभी आपको ग्रोसरी लेने से पहले फिक्र पड़ी कि कहाँ से लूँगी? अच्छा ऐसा करती हूँ, ये दूध नहीं लेती, ये ले लेती हूँ, अच्छा ये फ्रूट नहीं, ज़रा गला सड़ा ले लूँ, कभी पड़ी? आप सब गवाह इस बात के किसी को पड़ी? सिर्फ फ्रिज, फ्रीज़र, पेंट्री जाकर आज देखें, हम सब लेविश खाने हैं, स्नैक्स हैं, हेल्दी खाने, फिर उस पर ऑर्गेनिक का लफ्ज़ लिखा हुआ है, अब उस पर और 4 लफ्ज़ उन्होंने लिख दिए, ताकि $5 वाला या $4 वाली चीज़ है वो 10-20 की दे, क्योंकि ऑर्गेनिक लिखा है। हमें कोई फिक्र है अल्हम्दुलिल्लाह किरायों की? कोई गरीब नहीं है हम में से, हमारे पास किसी चीज़ की कमी नहीं है। तो इस्लाम के ऊपर नज़रें अगर लगी हैं ना अल्लाह की, तो वो भी किसी ने कहा कि ये जैसे सूरज मशरिक की बजाय मगरिब से निकलना है ना, क़यामत की अलामतें हैं ना, तो उन्होंने कहा कि इस्लाम का सूरज भी मगरिब से निकलना है इंशाल्लाह। हमें कोई झगड़े नहीं है इधर, हमारे पास कोई मजहबी इख्तलाफी बातें नहीं है, हर वक्त एजिटेशंस नहीं है, बाहर की सियासतें नहीं है, कोई धरने नहीं आ रहे, है कुछ ऐसा? क्या ये जन्नत से कम है ये मुल्क सारे? मैं तो एक से एक जगह देख ली, आप तो अमेरिका में है ना, मुझे तो अल्लाह ने कोई 10-8-10 मुल्क दिखाए 10-12 साल में, जन्नत है दुनिया में। और चूंकि मुस्लिम्स के बीच में होती हूँ, मैं कहती हूँ अल्लाह वाह तेरी कितनी नेमतें हैं मुसलमानों पर, खुशी भी है, सुकून भी है, पीस भी है एंड प्रॉस्पेरिटी भी है, खुशी भी है तो खुशहाली भी है। और क्या हो गया जन्नत में? तो क्या ये सारा कुछ हमने मल मार के बैठ जाना है? ये हमारे लिए अल्लाह ने दिया था। कोई कंपनी अपने एम्प्लॉय को गाड़ी देती है कि वक्त पे स्कूल आओ, वक्त पे जॉब करो, वक्त पे ऑफिस में आओ, वक्त में बैंक जाओ, जिधर भी जाना है। घर देती है कि इज्जत से रहो, तो वो गाड़ी को तो बना दे टैक्सी और उसके साथ सवारियाँ ढूंढो के और पैसे ले, और ऑफिस फिर वक्त पे ना आए, और घर को कर दे रेंट आउट। मुझे बताइए वो कंपनी उसको कल नहीं पूछेगी, अल्लाह मुसलमानों पे इतनी रहमतें क्यों कर रहा है? सबसे अमीर मुल्क मुसलमान, सबसे अमीर शख्स मुसलमान, फर्म कंपनियाँ मुसलमानों की बड़ी हैं। ये जो आप कहते हैं ना फलां ईबे और फलां बड़े बड़े मुल्क, उनके पार्टनर्स भी तो थाउजेंड्स में हैं ना, नहीं समझे? बड़ी कंपनियाँ अगर नॉन मुस्लिम्स के हाथ में हैं तो उसके पार्टनर्स भी उतने ही हैं, हिस्से टोटे करेंगे तो उतने ही बच जाएंगे। तो यहाँ तो एक एक मछली बैठी हुई है, बिलियनेरियन बैठे हुए हैं। मैं क्या कहूँ आपको, एक एक शादी पे करोड़ों लगाने वाले। तो फिर एक शादी के आ जाती है ऐसे लगता है यु कातिलूना फी सबीली ही सफ़ा, मेहंदी के थाल पकड़ के सफ़ों में खड़े होना, बारात ने आना ऐसे करना। इतना फारिग वक्त है मेरे आपके पास, घर घर खेल रहे हैं, गुड्डी गुड्डे की शादियां कर रहे हैं, और अल्लाह कुछ और पैगाम देता है। हम कहते नहीं, इसके लिए हफ्ते में एक दिन हम आया करेंगे, मस्जिद में जुमा पढ़ेंगे। कब आते हैं जुमा पढ़ने मस्जिदों वाले? जब इमाम साहब अल्लाह अकबर कहकर नमाज शुरू कर रहे होते हैं। अल्लाह ने एक यूनिवर्सल क्लास मर्दों की रखी थी जुमे की, कि चलो हफ्ते में एक दिन इनके खून को कोई तो गर्मा। आज हमारे मर्दों का सोर्स ऑफ ईमान क्या है? नमाज ईमान देती है जब समझ आ रही हो, इयाका नाबुदु इयाका नस्तईन। कितने मर्द हैं आज हम मुसलमानों में जो 5 वक्त मस्जिद जाकर नमाज पढ़ते हैं? ये भी एक्सट्रीमिज्म है हमारी नज़र में। क्या कहते हैं, मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक? वो पढ़े जिनके काम नहीं। आई एम सूटेड बूटेड, आई एम हैंटी फैंटी। हम तो भी कैसे पढ़े? अभी तो दीन सीखने सिखाने, इसको क्लैरिफिकेशन, और इस पे ही हम नहीं मेहनत कर पा रहे, बाकी काम कहाँ करेंगे? हिम्मतें टूटी हुई, दबे हुए अंदर से कच्चे। वीकनेस होती है ना अंदर, बाहर से नहीं दिखती। बाहर से सेहत अच्छी लग रही होती कुछ लोगों की, वो कहते नहीं मेरे अंदर वीकनेस है। मैं क्या बताऊँ, हुवल्लज़ी अरसल रसूलहु बिलहुदा व दीनिल हक़ लियुज़हिरहु अला दीनि कुल्लिही, अला दीनि कुल्लिही वलव करिहल मुशरिकून। इस्लाम को अल्लाह की नज़र से देखिए। देखिए माँ का बच्चा हो आपके पास और माँ सर पे खड़ी हो, कैसे रखते हैं? कोई बच्चे को यहाँ चुटकी भी सख्त करेगा ना, काटेगा, तो माँ कहेगी ये क्या किया आपने? और अगर माँ पास ना हो तो उस बच्चे को मेड कैसे रखेगी? क्या कुछ नहीं सुनते आप कहानियाँ? आज इस्लाम के बच्चे को गोद लीजिए, देखिए आपके बच्चे आपकी गोदों में सर रख के रोएंगे आपको माँ कहते हुए। हमने इस्लाम का बच्चा रोला, अल्लाह ने हमारे बच्चे रोल दिए, इल्ला माशाल्लाह। इस्लाम बातों का धनी नहीं है, वो है जो आपको मुझे इन सारी चीज़ों में दिख रहा है। आइए ज़रा लफ्ज़ों का ऐसी गो थ्रू करते हैं। लफ्ज़ी ज़ाहर देखिएगा, हुआ वही है। ये हुआ क्यों आ गया? वो ही है। तुम पता नहीं किसको समझ रहे हो, जिनको ग्रामर आती है ना, हु और हुआ का फ़र्क तो पता है ना। हुआ तुम उस रब को दूर समझते हो, असल में वही है। अल्लज़ी जिसने, इसम मौसूल, अरसला उसने भेजा, किसको भेजा? रसूलहू अपने रसूल को। और रसालत का काम नरमी और आहिस्तगी के साथ होता है, पीछे भी बात की थी ना। रसूलों ने बड़े सुकून के साथ काम किया है। लिखिए ज़रा आज अपने ऊपर एक क्राइटेरियन सेट करें, क्या आप एक पुरसकून इंसान हैं? क्या आपको देखकर दूसरा पुरसकून होता है? आपके चेहरे पे इत्मीनान है? आपकी बात में, आपके कलाम में नरमी है? और अगला सवाल लिखिए, नमाज जो पढ़ती हूँ वो सुकून वाली पढ़ती हूँ कि धन धन करके साथ वाली जगह को भी हिला दूँ? याद रखिए आपका ये थर्मामीटर है, जिसको आप कहते हैं ना कि आप चेक करिए अपना टेम्परेचर। आप और मैं आज इस लफ्ज़ रसूल को अपने सामने रखेंगे और देखेंगे कि अल्लाह के नबी में कितना इत्मीनान, चाल कितनी नरम, नमाज कितनी आपकी गरम, और चेहरे पे पुरसुकून। हवाइयाँ उड़ी हुई आज हमारे, और कुछ करने के शौक में हम हौलते हैं। पुरसुकून हो जाइए। देखिए मैं इस वक्त आपसे बोल रही हूँ ना, मैं अपनी टोन ज़रा सी तेज़ कर दूंगी ना तो आपके दिमाग पे बोझ होगा। अब आपको तो व्हाट्सएप पे एक आ गया ना ऐसा ऑप्शन, मैसेज को फास्ट करके सुन ले, सबके पास ही होगा ना। मैं कहती हूँ कि इंसानों को बेसब्रा बनाने की कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। मेरा गुमान है कि 80% लोग फास्ट करके सुनते हैं। नबी की ज़िंदगी में थ्रिल नहीं थी, और नबी और रसूल का फ़र्क आपके सामने है। नबी, रसूल और मलाइका, इस सूरत में ये तीसरी दफ़ा आई कि नबी पिछली शरीयत की ही बात करता है और इस्लाह की कोशिश करता है, जबकि रसूल को नई शरीयत मिलती है। फरिश्ते भी प्याम रसा होते हैं, लेकिन वो अल्लाह के हुक्म से देते हैं। आगे देखिए, बिलहुदा, हिदायत के साथ। हिदायत के लिए अरबी ज़ुबान में इहतदा और रुश्त का लफ्ज़ भी आता है। सीधी राह पर गामजन होने के लिए लफ्ज़ इहतदा आता है, और रशदा का लफ्ज़ सीधी राह इख्तियार करने के बाद नेक आदत और अतवार अपनाना और इस पर बाकी रहना। इसको हाईलाइट कीजिए। मैं अक्सर सोचती थी कि खुलफाए राशिदीन क्यों कहते हैं हम, ना ये वजह आप लिख लें। राशिदीन कौन होते हैं? नंबर एक, सीधी राह इख्तियार करें, नेक आदत और अतवार अपनाएं और फिर उस पर कायम भी रहें। अल्लाह हमें राशिदीन बना दे। वह दीनी और दीन, दीन का लफ्ज़ वही है जो दाना या दीन उदीनन, जिसमें कर्ज की बातें भी आते आते दैन है। कर्ज तो ये दीन की अमानत है आपके मेरे पास। दीन का लफ्ज़ आपको बताता है कि ये अमानत है। कल इसके बारे में सवाल जवाब होंगे आपसे मुझसे। अल्लाह हमें इस कर्ज़ की अदायगी की बेहतरीन तौफीक दे। और अल्लाह ताला कहते हैं, इन्ना दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, दीन तो अल्लाह की नज़र में इस्लाम ही है। अब तुम जो मर्ज़ी कर लो, जिसको मर्ज़ी ले लो। तो दो तीन लफ्ज़ अक्सर हम पढ़ते हैं, एक है दीन, एक है शरीयत, एक है मिल्लत। फ़र्क क्या है इनका, ज़रा सा लिख लीजिए। दीन वो अहकाम इलाहिया जो आदम से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक गैर मुतबद्दिल रहे, तब्दील नहीं हुए, और उनकी इताअत करने का हुक्म था। सीधी सी बात है, अकीदा। कभी ये नहीं हुआ कि खुदा दो हैं, अब तीन हो गए, अब एक कर लो, ऐसा नहीं हुआ। इसमें अमूमन अकायद आते हैं। शरीयत वो हिस्सा है जो वक्त और हालात के मुताबिक बदल जाता था। जैसे आप सुनते हैं ना कि आदम के दौर में बेटे बेटी का निकाह जायज़ था, या हज़रत यूसुफ़ के दौर में तज़ीमी सजदा जायज़ था। ठीक है, तो शरीयत में अहकामात में तब्दीलियाँ होती रहती हैं। और मिल्लत कहते हैं उस निज़ाम को जो एक नबी अल्लाह के हुक्मों की फरमाबरदारी में अपने इत्तबा करने वालों की जमात में कायम करता है। यानी मिल्लत का तरीक़ाकार आप कह लीजिए ज़रा सा वाइड है, नेशन कह लें इंग्लिश में, तो आपको बात समझ आ जाएगी। किसको? आगे चलिए, अल-हक, हक अल्लाह की ज़ात है। सिद्क और हक का फ़र्क हम पीछे भी देख चुके। सिद्क सच्ची बात के लिए आता है, खिलाफे वाक्या कोई बात ना कहना, और हक तजुर्बे और मुशाहदे के बाद सच और दुरुस्त शुदा चीज़ को कहते हैं। लियुज़हिरहू, ताकि वो गालिब कर दे इसको। जहर का लफ्ज़ उर्दू में भी हम बोलते हैं, जहर कहते हैं पुश्त को। सूरज पुश्त दिखा जाता है उस वक़्त जहर की नमाज का वक्त शुरू होता है। ठीक है, और वन कज़ा ज़हरक, तेरी पुश्त तोड़ दी, कमर तोड़ दी, नबी सल्लम के लिए आता है। अरबी ज़ुबान में पुश्त के लिए तीन लफ्ज़ आते हैं, जहर या जहर, दुबर और सुल्ब। आपने तीनों लफ्ज़ उर्दू में भी सुने होंगे, फ़र्क नोट कीजिएगा। जो जहरा होता है ना, किसी जानदार की मकद, मकद वो नीचे जैसे हिप्स की हड्डी नहीं होती, वहाँ से लेकर गर्दन तक का पिछला हिस्सा, मैं आपको इंग्लिश में बता देती हूँ, स्पाइनल कॉर्ड। तो नीचे से लेके आखिर पूरे हिस्से को जहर कहते हैं, जहरा। जिसके बीच में फिर डिफरेंट आपको होता है ना, कि वो जो उसकी डाइज होती हैं, वो सब के मजमूए को। दुबर कहते हैं सिर्फ नीचे वाले हिस्से को, मकत यानी जहाँ से गंदगी जिस्म से निकलती है, हर चीज़ का पीछे का हिस्सा। और सुल्ब कहते हैं रीढ़ की हड्डी, चर्बी, गुदा वगैरह समेत पुश्त। यानी जहर और सुल्ब मिलता जुलता लफ्ज़ है, यानी रीढ़ की हड्डी वही स्पाइनल कॉर्ड को ही कहते हैं। फ़र्क इतना लग रहा है कि जहर में सिर्फ बोन्स का स्ट्रक्चर है जो अंदर आपका स्केल्टन है, लेकिन सुल्ब के अंदर ऊपर चढ़ा हुआ गोश्त और चर्बी वगैरह भी है। कितनी रिच जुबान है अरबिक। आगे देखिए, अला, दीन, दीनों के पीछे भी गुजर गया, कुल्ली ही, सबके सब, मुकम्मल। कुल का लफ्ज़ उर्दू में भी हम बोलते हैं। ठीक है, अरबी ज़ुबान में कुल या मुकम्मल कहने के लिए तीन लफ्ज़ आते हैं। एक तो कुल जो यहाँ है, हर एक, सब, यानी दो लफ्ज़ लिखे, हर एक, एवरी वन, एवरी थिंग, बस ये फ़र्क है, एवरी वन, एवरी थिंग। काफ़ों का लफ्ज़ आता है पूरे का पूरा, होल के मानों में, कम्प्लीटली, सारे के सारे। ठीक है, तो ये लफ्ज़ कुल से या कल से अबलग है और कामिल भी है, यानी काफ़ा में ज़्यादा इन डेप्थ है, और अजमाउन सब इकट्ठे होकर मिलकर। वलऊ और अगरचे, करीहा नापसंद करें, अल मुशरिकून मुशरिक, शीन रा काफ से शिरक, उसी से फिर मुशरिक, बड़ा आम लफ्ज़ है सभी को आता है। अरबी ज़ुबान में शिरक के लिए तीन लफ्ज़ आए हैं, या आप कह सकते हैं शरीक के लिए तीन लफ्ज़ हैं, हलीत शरीक और निद्दा। आयतें याद आती हैं, हुलता जमा की सूरत में आया, जुज़वी शरीक के कार, कुछ लोग कुछ देर के लिए किसी काम में आपस में मिल जाते हैं ना, पार्टनर्स के मानी लिख लीजिए बस, कुछ वर्किंग पार्टनर, कुछ स्लीपिंग पार्टनर। इसी तरह शरीक कहते हैं किसी एक काम में मुकम्मल शराकत रखने वाला, जिसको आप कहते हैं ना 50-50 पार्टनर्स, जितना मेरा उतना आपका, जो मैं करूँगी वो आप भी करेंगे। तो खलीज टाइम, वो कहता है बस हमें शेयर दे दें, यानी खलीज है ना, ये शेयर होल्डर है, दो और शेयर ले ले, तीन ले। शरीक जो है वो है जो वाकई उस काम को लेकर चलने वाले हैं। और निद्दा, सूरह बकरा में भी हम ये लफ्ज़ पढ़ते हैं ना, ज़ात और जौहर में शरीक, और मद्दे मुकाबिल को भी निद कहते हैं। अल्लाह के नबी ने ये लफ्ज़ बोला था, अजलतनी लिल्लाही निद्दा, क्या तू मुझे अल्लाह का शरीक करार देता है, बल माशा अल्लाह वहदा। तो बहरहाल आयत तो हमारी पूरी हुई, हदीस ले लीजिए, सिलसिला सहीहा की रिवायत है 3252, हज़रत आयशा राविया हैं। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अल्लाह उमर बिन ख़त्ताब के ज़रिए इस्लाम को गलबा नसीब फरमा। आज आपको ये इस आयत के साथ इस हदीस को सुन के कुछ समझ आया, लियुसख़िरहु अला दीनि कुल्लिही वलव करिहल काफिरुन। इस्लाम को मज़बूत शख्सियात की ज़रूरत है, मज़बूत ईंटों की ज़रूरत है, मज़बूत लोगों की ज़रूरत है। उमर एक ऐसी ईंट थे कि जिनको ना कोई तोड़ सका, ना उखेड़ सका और ना हटा सका। इस्लाम बंद कमरों में था यहाँ तक कि उमर मुसलमान हो गए, स्ट्रॉन्ग, वोकल, बात समझने वाले, और अल्लाह से इतना डर कि अगर किसी ने कह दिया कि उमर अल्लाह से डरो तो गाल ज़मीन पे रख दिया, रोने लग गए। किसी ने अबू बकर से कहा कि अबू बकर आप उमर का नाम क्यों लेते हैं अपने बाद, उमर में बहुत सख्ती है, उम्मत में बहुत सख्ती करेंगे, कुछ कहते ना, नहीं नहीं उसको नहीं आगे लाना, वो बहुत सख्त है। तो कहा नहीं, जिम्मेदारियों का बोझ उसमें नरमी लाएगा। ऐसे उमर की ज़रूरत है आज इस्लाम को। आप में से कौन उमर बनना चाहता है? हम अपने बच्चों के लिए तो फौरन कहते हैं पहले आप बनिए, जब आप उमर बनेंगे अल्लाह तोहफे में जूंगे में बच्चों को भी बना देगा। अपने बच्चों से वो मत एक्सपेक्ट कीजिए अभी जो भी आप खुद नहीं कर सके। और एक ऐसी सहाबा की जो खूबियाँ थी ना, रुहमा बैनहुम अशिद्दाउल कुफ्फार, सूरह फतह की आखिरी आयत में आता है, आज इस्लाम को ऐसी ईंटों की ज़रूरत है। और आप देखेंगे कि जब ऐसी ईंटें बन जाएंगे ना कुछ लोग, तो फिर ऊपर की चीज़ें तो इतनी आती हैं। मिसाल देती हूँ कि ये बिल्डिंग बन रही है, अब चूंकि आपका स्कूल है, बिल्डिंग है, तो आपको अपनी तरफ तवज्जो जाएगी, लेकिन उसके साथ साथ ओवरऑल भी सोचिएगा। सोचिए ये बिल्डिंग इस्लाम है, कुछ लोग ठुक जाते हैं। देखिए ना, स्कूल में अभी तो बुनियादों की ज़रूरत ही, आप सबको मैं कहती हूँ आप यहाँ क्या करना चाहते हैं, आप कहते हैं मैं हफ्ते में एक दिन, आप कहते हैं दो दिन, आप कहते हैं सुबह में, आप कहते शाम में, यानी अकॉर्डिंग टू योर इज। तो मुझे बताइए कि कौन सी ऐसी बिल्डिंग होगी कि जहाँ सबसे पहले तो बुनियाद खोदनी थी ना, नहीं समझे? जब आपको बुनियाद में लगना है तो आप फिर पार्ट टाइम नहीं हो सकते, फुल टाइम नहीं हो सकते, आपको डेडिकेशन के साथ करना पड़ता है। अब आप, हम इंतज़ार कर रहे हैं कि आप, सारी खिड़कियां तो आई पड़ी हैं, अल्लाह खिड़कियां भी रखी हुई हैं, ये छत के ये टुकड़ियां टुकड़ियां भी रखी हैं, बट अभी कोई ईंटें ही नहीं मिल रही जिससे बुनियादें खोदें, तो कहाँ खपेंगे हम सारे? आज बहुत सारे पार्ट टाइमर मुस्लिम्स ज़ाया हो रहे हैं, और ये पार्ट टाइमर्स पता कौन है? ये जैसे हमारे जैसे इदारों से पढ़ के निकलते हैं गरीब बेचारे, ईमान भी जोश आता है, दिल भी करता है कुछ करे, पर फिट ही नहीं हो रहे किसी जगह दुनिया में, इस्लाम का वो नक्शा ही नहीं। जैसे मैंने आपको राइट ब्रदर्स की मिसाल दी ना, उन्होंने थोड़ी देर फ्लाइट चला के दिखाया कि इट्स पॉसिबल, आज मिलियंस जहाज चलते हैं डेली, है ना, हो गया ना, अब जहाज भी बन गया, एयरपोर्ट ही नहीं है, वो रनवे ही नहीं है उस मुल्क में जिस पे जहाज चलेगा, तो जहाज चलेगा? दैट इज़ द प्रॉब्लम। हम सब कुरान पढ़ने के बाद थोड़े मोटिवेटेड होते हैं, कुछ करना चाहते हैं, और आप सबको देखकर मुझे वैसे ही लगता है। हर जगह जहाँ जाती हूँ माशाल्लाह अच्छे से शहर के क्रीम लोगों में रह के आती हूँ, क्योंकि जो कुरान के साथ जुड़ जाते हैं वो आप सब क्रीम पीपल हैं। कौन आपको आके इधर बिठाता अगर आप ना आते, है ना? लेकिन मसला क्या है कि आपकी कदर कोई नहीं कर पा रहा, क्योंकि अभी वो ईंटें, वो ठुकी हुई लकड़ियाँ, वो नीचे इस्लाम का फाउंडेशन नहीं स्ट्रांग, तो अब हम आप कहाँ सेट होंगे? तो फिर क्या करना पड़ेगा, आप बताइए ज़रा मुझे। मेरा सवाल भी क्लियर है कि नहीं? कि हम ये बिल्डिंग बनाने बैठे, हर बंदा खिड़कियाँ ला रहा है, कोई शीशे ला रहा है, कोई पेंट का सामान ला रहा है, कोई ये नेल्स ला रहा है, नॉब्स होते हैं ये ला रहा है, सब कुछ ला रहा है, लेकिन वो ईंटें नहीं ला रहा जो बुनियादों में ठुके, तो क्या करेंगे? शाबाश, अच्छा पॉइंट है इनका कि हम अपनी मर्ज़ी का काम करना चाहते हैं, करना भी इस्लाम का चाहते हैं, जज्बे भी बड़े प्यारे हैं, लेकिन अपनी मर्ज़ी, मेरी चॉइस। अगर अबू बकर, उमर, उस्मान ने ऐसा किया होता ना, तो आज वो ना होते। इस्लाम को सपोर्ट देने के लिए हमें खुद को बदलना पड़ेगा, सख्त जान बनाना पड़ेगा, अपने कंफर्ट जोन से निकलना पड़ेगा। सहाबा का और नबी सल्लम का दौर और बाकियों का और अपना आज का देखते हैं, आज भी कोशिश बहुत है, आज भी जज्बे बहुत हैं, लेकिन उनको एक रुख नहीं मिलता। इल्म बराए इल्म है, हिफ्स बराए हिफ्स, तजवीद बराए तजवीद, और तफसीर बराए तफसीर, फिक बराए फिक। सच है कि नहीं? ये जज्बा जिहाद या एक यूनिटी और एक टीम बिल्डिंग में नहीं ढलता। दीन का मिजाज क्या है कि खूबसूरत ईंटें, हर बंदा खूबसूरत है, हर फर्द है मिल्लत के मुकद्दर का सितारा। आप सब अपने आप को सोचिए ना कि आप सितारे हैं, लेकिन पीछे एक आसमान चाहिए ना जिस पे सितारा टके। आप 10 चीज़ें कायनात की गौर कर लें, आसमान पे सितारों की अभी अल्लाह ने मुंह में डाल दी बात, दरिया की लहरें देख लीजिए, दरख्त के साथ लगे पत्ते देख लीजिए, माँ के साथ बच्चे का पेट में जो ताल्लुक है उसको देख लीजिए, पेवस्तगी ये मिसिंग है। दीन को हम एक इनफिरादी काम समझते हैं और एक ज़ाती काम समझते हैं, यानी सवाब नेकी जज्बे सदका जारिया भी अपना, मेरा सदका जारिया होगा, मेरी ये होगा, अल्हम्दुलिल्लाह, ये हम अपने सवाब अपने नेकियों, और अब वाकई बहुत करते हैं, बट आप ज़रा सा यानी एक जुमला लिखिए, मैंने अपने लिए क्या किया? अल्हम्दुलिल्लाह, फजर पढ़ी, दुआएं पढ़ी, कुरान पढ़ा ABCD, घर देखा, बच्चों को स्कूल भेजा, अल्हम्दुलिल्लाह सब अच्छा किया आपने, बट वट आई हैव डन फॉर इस्लाम टुडे? ज़ाहिर है आप इस बच्चों की अच्छी तरबियत कर रहे हैं, वो अच्छे मुस्लिम बनेंगे, आप अच्छी बीवी बन रही हैं, हर मुस्लिम घराना पुरसकून घराना होगा ना, बस 19-20 का फ़र्क रह जाता है। अपने नेकी के काम को इस्लाम का काम बना दें, और उसके लिए इत्तेहाद, व्यवस्था रहे शजर से उम्मीदें बहार रख। जब आप इनफिरादियत को इज्तमाईत में गुम कर देते हैं तो बड़े काम होते हैं, और लिख लें, बड़े काम करने के लिए खुद को गुम करना पड़ता है। NN क्लास जो हमारी माशाल्लाह पहले बैच की निकली जोहराबाद से, अल्लाह ने उनको फारिग कराया जब, तो उससे पहले ही एक ऐसा बिग प्रोजेक्ट सामने आया, इस्लामिक स्कूल्स होते हैं वहाँ भी बहुत प्यारे अच्छे अच्छे स्कूल में से एक स्कूल की चेन है पूरी, तो उन्होंने पिछले कई साल से स्कूल बनाया हुआ है, अच्छा स्कूल है, पाकिस्तान के टॉपर स्कूल्स में से, और मुझे याद नहीं है क्या, लेकिन अच्छी फीस है उनकी, जैसे पेड बच्चे होते हैं ना वो स्कूल है। तो उनके साथ हमारे पर्सनल रवाबित ये अपने क्लासेस और कुरान के कोर्सेज की सूरत में थे, उनकी तरफ से एक ख्वाहिश आई थी कि आप लोग माशाल्लाह स्कूल पढ़ा रहे हैं, और हमारे हिसाब से नूरुल कुरान का नाम अब कुरान स्कूल के साथ ये लिख दीजिए। हमें किसी ने कहा भी कि आपको अपनी वेबसाइट पे लिखना चाहिए टीचर प्रोड्यूसिंग इंस्टीट्यूट, क्योंकि आपकी तालीमात इतनी स्ट्रांग है कि इसको पढ़ने के बाद हर बंदा टीचर बनना चाहता है, ये उनका कमेंट थे कुछ लोगों के। उन्होंने कहा कि हमें अपनी कुछ टीचर्स दीजिए, और हम कई साल से इस्लामिक स्कूल के नाम पे काम कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि वी आर नॉट सेटिस्फाइड विद आवर सिस्टम। ये सच भी किसी को ही आता है बस? तो उसने कहा कि माँ बाप फीस देते हैं, हम बच्चों को हिफ्ज़ करा रहे हैं, हम बच्चों को इस्लामियात के नाम पे बुक पढ़ाते हैं, लेकिन वो असरात नहीं आ रहे, और उनके पास बकौल उनके और हमने खुद भी देखा, टीचिंग में कौन लोग आते हैं जो पैसे के लिए जाते हैं? कमज़ोर घरों की लड़कियां, माँ बाप बूढ़े हैं, भाई नहीं है, जॉब चाहिए, यकीन करें 6-7 हज़ार रुपये पे भी एक टीचर को पूरे महीने के लिए लोग इक्वायर कर लेते हैं। इस्लामिक स्कूल है और वहाँ जो टीचर्स हैं उन्होंने कुरान नहीं पढ़ा, क्योंकि खाली हिफ्ज़ कराने से बच्चे नहीं बच रहे, खाली तजवीद से लोगों के मखारिज तो ठीक हो रहे हैं लेकिन दिल दिमाग नहीं ठीक हो रहा। और आज इन नस्लों को अगर आपने एथीज़म से, एग्नोस्टिज़म से और ABCD से और होमोसेक्स से और आई एम फलां इससे बचाना है, तो आपको वैसे इनके दिलों में कुरान उतारना है जैसे आपके उतरता है। उतरता कि नहीं उतरता? लाखों गवाहियाँ मौजूद है ना कुरान दुनिया में पढ़ने वालों की। अंधेरों को रोशनी में बदलने के लिए नस्लों के हाथों में कुरान देना पड़ेगा। लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, इसलिए इस तमन्ना के साथ अपनी नस्लों की हिफाजत करनी है हम सब ने इंशाअल्लाह ताला। और अपने आप को इस चीज़ पे रखिए कि ये कोर्सेज करके आगे करना क्या है। देखिए ना, मेडिकल कॉलेज में जाके डॉक्टर बनते हैं ना, प्रैक्टिस करते हैं, जो लॉ पढ़ जाते हैं वो लॉयर बनते हैं। तो हम सब जो दिन रात पढ़ना पढ़ाने की बात करते हैं, तो आगे हमने क्या करना है? हमने यही काम करना है। इस इल्म के नूर के बगैर तो दुनिया में इस्लाम नहीं गालिब होगा। इकरा बिस्मी रब्बी का पहली ईंट तो पढ़ने की थी। तो इंशाल्लाह आप सब इस रास्ते में